शुरुआती कथन ध्वनि एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आज हम बात कर रहे हैं डेम हिलरी मेंटल के बहुत ही मशहूर उपन्यास वुल्फ हॉल पर।
हाँ, वुल्फ हॉल 2009 में जब ये आई तो इसने तहलका मचा दिया था।
बिल्कुल, न सिर्फ बुकर पुरस्कार जीता बल्कि इसने जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों को पढ़ने का नजरिया ही बदल दिया। तो आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे
और देखेंगे कि मेंटल ने वो 16वीं सदी का इंग्लैंड, वो ट्यूडोर दौर कैसे हमारे सामने एकदम जिंदा कर दिया है।
हिलरी मेंटल जो पिछले साल हमें छोड़कर चली गईं, उनकी लेखनी में एक खास बात थी। ये उपन्यास वुल्फ हॉल असल में थॉमस क्रॉमवेल पर उनकी एक त्रयी मतलब ट्रिलॉजी की पहली किताब है।
और ये त्रयी खास इसलिए है क्योंकि इसने थॉमस क्रॉमवेल, जिसे इतिहास में अक्सर आप देखिए एक विलेन या खलनायक की तरह दिखाया जाता है,
बिल्कुल,
उसे एक बिल्कुल नए मतलब एक मानवीय रूप में पेश किया है।
सही कहा, मेंटल की यही तो खासियत थी, वो किरदारों के मन में बहुत गहरे उतर जाती थी। रिसर्च तो कमाल का था ही, पर लिखने का अंदाज ऐसा कि लगता था सब कुछ अभी हो रहा है हमारी आंखों के सामने।
हाँ, विजरल एकदम। उन्होंने बड़े राजाओं या लड़ाइयों पर फोकस करने के बजाय एक आदमी थॉमस क्रॉमवेल, उसके नजरिए से उस पूरे उथल पुथल वाले समय को दिखाया।
तो आज हम इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। उपन्यास की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, जो मुख्य किरदार हैं उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और हाँ, जो केंद्रीय संघर्ष हैं उन पर बात करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। और शुरुआत ही ऐसी है कि पाठक हिल जाता है ना।
हाँ, वो पहला सीन, पुटनी, पत्थर, एक लड़का थॉमस क्रॉमवेल और उसका बाप वॉल्टर जो लोहार है उसे बुरी तरह पीट रहा है।
हाँ, खून बह रहा है, दर्द है, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक जिद दिखती है,
जीने की जिद।
यहीं से मतलब कहानी की टोन सेट हो जाती है, हिंसा, संघर्ष और कैसे वो लड़का खुद को गढ़ेगा।
बिल्कुल, वो सीन जैसे क्रॉमवेल के चरित्र की नींव रख देता है। वो वहीं समझ जाता है कि ताकत क्या चीज है और बेबसी क्या, और ये सब हो कहां रहा है हेनरी अष्टम के इंग्लैंड में।
वो भी क्या दौर था, धर्म, राजनीति, निजी महत्वाकांक्षाएं सब बुरी तरह से उलझा हुआ।
और उपन्यास के केंद्र में है वो जिसे कहते हैं राजा का महान मामला, द किंग्स ग्रेट मैटर।
हाँ, राजा हेनरी अष्टम, उन्हें एक बेटा चाहिए था, वारिस, ताकि ट्यूडर राजवंश चलता रहे।
बिल्कुल,
उनकी पत्नी कैथरीन ऑफ एरागॉन वो सिर्फ एक बेटी दे पाई थी, मैरी।
तो राजा को लगने लगा कि भाई ये शादी शायद भगवान को मंजूर नहीं, क्योंकि कैथरीन पहले उनके बड़े भाई की पत्नी रह चुकी थी।
हाँ, और सच तो ये भी था कि उनकी नजरें एन बोलिन पर थीं।
अच्छा, एन बोलिन, वो सिर्फ राजा की मिस्ट्रेस बनकर नहीं रहना चाहती थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रानी बनना चाहती थी, और इसके लिए जरूरी था कि हेनरी की कैथरीन से शादी रद्द हो जाए।
एनोलमेंट।
लेकिन यहीं पेंच फंसा, शादी रद्द करने का अधिकार किसके पास था? पोप के पास, रोम में।
और पोप क्लेमेंट सप्तम वो बेचारे खुद फंसे हुए थे।
कैथरीन का भतीजा चार्ल्स बंचम, जो पवित्र रोमन सम्राट था, यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी, उसका जबरदस्त दबाव था पोप पर।
तो एक तरफ राजा की निजी इच्छा, बेटा चाहिए, एन बोलिन चाहिए, और दूसरी तरफ पोप की संस्थागत शक्ति जिस पर बाहरी दबाव भी है।
हाँ, तो ये सिर्फ एक तलाक का मामला नहीं रहा, ये बन गया इंग्लैंड की संप्रभुता का सवाल। इंग्लैंड का असली मालिक कौन, राजा या पोप? इसी माहौल में, इसी कश्मकश के बीच हमारा नायक थॉमस क्रॉमवेल सामने आता है।
और मेंटल जिस क्रॉमवेल को दिखाती हैं वो इतिहास की किताबों वाले क्रॉमवेल से बहुत अलग है। इतिहास उसे कैसे दिखाता है? मौका परस्त, बेरहम।
बिल्कुल, जोड़ तोड़ करने वाला। लेकिन मेंटोल हमें एक एक जटिल इंसान दिखाती हैं। वही पुटनी का पिटावा लड़का जो घर से भागा, यूरोप गया, सिपाही बना, व्यापारी बना, बैंकर बना, फिर वकील। उसने दुनिया देखी थी, जमीनी हकीकत समझता था वो।
हाँ, मल्टी टैलेंटेड। जो वो उपन्यास में मुझसे मिलते हैं वो कार्डिनल वुल्जी के लिए काम कर रहे हैं, उनका सबसे भरोसेमंद आदमी।
कार्डिनल वुल्जी, वो भी क्या शख्सियत थे, एक कसाई का बेटा जो अपनी काबिलियत के दम पर इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर और कार्डिनल बन गया, मतलब राजा के बाद सबसे ताकतवर।
और क्रॉमवेल उनका दाहिना हाथ, क्या काबिलियत थी उसमें, कई भाषाएं जानता था, हिसाब किताब में माहिर, कानून का गहरा जानकार।
और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को पढ़ लेता था, समझ जाता था कि कौन क्या चाहता है, किससे कैसे काम निकलवाना है, एक तरह का मास्टर मैनिपुलेटर कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में अगर ऐसा हो सकता है तो।
और मेंटेल उसके निजी जीवन के दुख को भी दिखाती हैं। वो भयानक बीमारी स्वेटिंग सिकनेस जिसमें उसकी पत्नी और दो बेटियां मर जाती हैं, ये चीजें उसे और मानवीय बनाती है ना।
हाँ बिल्कुल, उसकी सख्ती के पीछे के जख्म दिखते हैं। तो क्रॉमवेल की कहानी शुरुआत में वुलजी से जुड़ी है। वुलजी ही वो सीढ़ी थे जिससे वो ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर वुलजी का पतन शुरू होता है।
क्यों?
क्योंकि वो राजा की शादी रद्द करवाने में नाकामयाब रहे।
हाँ, वो जो सम्राट चार्ल्स पंचम का दबाव था रोम पर और रोम की अपनी राजनीति, पोप चाहकर भी हेनरी की मदद नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक फ्रायर्स में एक कोर्ट भी बैठी, पर नतीजा कुछ नहीं निकला।
और राजा हेनरी का सब्र जवाब दे गया। उधर एन बोलेन और उसके समर्थक, जैसे वो ताकतवर हॉवर्ड परिवार, वो वुलजी के खिलाफ राजा के कान भरने लगे।
तो वुलजी पर प्रिमिनायर का आरोप लगा दिया गया। ये एक पुराना कानून था जिसका मतलब था कि आपने राजा की बजाय पोप के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाई है। बहुत संगीन इल्जाम। लॉर्ड चांसलर का पद छीन लिया गया, सारी दौलत जब्त कर ली गई और उन्हें यॉर्क भेज दिया गया, दरबार से दूर। एक तरह से उनका सियासी करियर खत्म कर दिया गया।
और ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े लोग गिरे हुए ताकतवर का साथ छोड़ देते हैं, तब क्रॉमवेल क्या करता है?
वो अपने मालिक वुलजी के साथ खड़ा रहता है। ये बात बहुत मायने रखती है।
हाँ, वो न सिर्फ वुलजी के कानूनी मामले देखता है, बल्कि हिम्मत करके राजा के सामने भी वुलजी की तरफदारी करता है। सोचिए जरा,
ये वफादारी उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी। और राजा हेनरी, जो खुद वफादारी की बड़ी कदर करते थे, कम से कम दूसरों से उम्मीद तो रखते ही थे।
हाँ बिल्कुल। तो उन पर इस बात का असर हुआ, उन्होंने क्रॉमवेल की हिम्मत और उसकी काबिलियत को पहचाना।
ये चीज उनके दिमाग में रह गई।
लेकिन वुलजी का अंत फिर भी दुखद ही हुआ। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए उन्हें लंदन वापस बुलाया जा रहा था, पर वो रास्ते में ही लेस्टर में मर गए, एक टूटे हुए इंसान की तरह। क्रॉमवेल के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था। उसने सिर्फ अपना मालिक नहीं खोया था, बल्कि एक पिता समान व्यक्ति, एक मेंटोर खो दिया था।
अब क्रॉमवेल की स्थिति क्या थी? वुलजी जा चुके थे, क्रॉमवेल एक बदनाम आदमी का नौकर रह गया था, उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा था।
कोई भी सोचता कि अब इसका क्या होगा, ये तो खत्म हो गया। लेकिन यहीं से क्रॉमवेल की असली कहानी शुरू होती है, उसकी वापसी।
उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी कानूनी समझ, अपनी बातचीत की कला, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इन सब का इस्तेमाल किया।
उसने खुद को राजा के सलाहकारों के लिए उपयोगी बनाया। धीरे धीरे एक एक करके उसने अपना नेटवर्क फिर से बनाया। और राजा हेनरी,
राजा हेनरी को वो वफादारी याद थी, और राजा अपनी शादी वाली समस्या में बुरी तरह फंसे हुए थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
तब क्रॉमवेल सामने आया और उसने एक ऐसा आइडिया दिया, एक ऐसा समाधान सुझाया जो एकदम क्रांतिकारी था, किसी ने सोचा भी नहीं था वैसा।
क्या था वो समाधान?
क्रॉमवेल ने कहा, अगर पोप इजाजत नहीं देता तो पोप की जरूरत ही क्या है। इंग्लैंड अपने आप में एक साम्राज्य है और राजा अपने साम्राज्य में सर्वोच्च है। चर्च का भी मुखिया राजा ही हो सकता है।
वाह, मतलब सीधी टक्कर रोम से। ये तो शाही वर्चस्व, रॉयल सुप्रेमेसी का सिद्धांत था।
हाँ, उस वक्त सोचना भी खतरनाक था। सदियों से पोप की सत्ता चली आ रही थी, लेकिन हेनरी को ये बात जच गई। उन्हें लगा, हाँ यही रास्ता है।
और क्रॉमवेल वो आदमी था जो इस रास्ते पर राजा को ले जा सकता था। वो राजा के सबसे करीबी, सबसे असरदार सलाहकार बन गया, मास्टर सेक्रेटरी।
वो संसद सदस्य चुना गया और फिर उसने संसद को ही जैसे राजा की इच्छा पूरी करने का औजार बना लिया। एक के बाद एक कानून पास करवाए,
ऐसे कानून जिनसे इंग्लैंड में पोप का अधिकार धीरे धीरे खत्म होता गया।
हाँ, और उसने अपने विरोधियों को, वो जो पुराने ख्यालात के अमीर लॉर्ड्स थे, जो बिशप थे, उन्हें अपनी तेज बुद्धि से, अपनी मेहनत से और हर छोटी डिटेल पर ध्यान देने की अपनी क्षमता से मात दी।
जाहिर है इसके साथ रुतबा आया, पैसा आया, ताकत आई, लेकिन दिलचस्प बात यह है, और मेंटेल ये दिखाती हैं, कि क्रॉमवेल सिर्फ सत्ता के लिए ये सब नहीं कर रहा था।
हाँ, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की भी भावना थी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल धार्मिक सुधारों को आगे बढ़ाने में किया। अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद हो, इसे भी उसने बढ़ावा दिया।
तो मतलब वो सिर्फ एक चालाक राजनीतिज्ञ नहीं था?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा जटिल था। चलिए अब इस कहानी के कुछ और अहम किरदारों की बात करते हैं। एन बोलेन, जिनके बिना शायद ये सब होता ही नहीं।
हाँ, एन बोलेन, मेंटल उन्हें कैसे दिखाती हैं? सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा?
बिल्कुल नहीं, वो उन्हें बेहद बुद्धिमान, राजनीतिक रूप से चतुर, पढ़ी लिखी और जबरदस्त इच्छा शक्ति वाली महिला के तौर पर पेश करती हैं।
वो फ्रांस के दरबार में रही थीं, वहां से वो नई सोच, रिफॉर्म वाले विचार लेकर आई थीं। उनका लक्ष्य साफ था, रानी बनना, और वो बनके रहीं।
हाँ, उन्होंने हेनरी को 7 साल इंतजार करवाया। रानी बनने के बाद उन्होंने अपने असर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को हटाने में किया, जैसे वूल्जी और बाद में थॉमस मोर, और सुधारों को भी आगे बढ़ाया।
क्रॉमवेल के साथ उनका रिश्ता कैसा था?
बड़ा दिलचस्प, मतलब एक तरह का तनाव भरा गठबंधन। दोनों सुधार चाहते थे, दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी थी, लेकिन राजा के सबसे करीबी कौन हो, इसके लिए उनमें एक होड़ भी थी।
और एन की सारी ताकत, सारी हैसियत किस बात पर टिकी थी?
बस एक बात पर, कि वो राजा को एक बेटा दे पाए, जो वो नहीं दे पाए। खैर, वो आगे की कहानी है।
और फिर है खुद राजा हेनरी अष्टम, जिनके इर्द गिर्द ये सारा नाटक घूम रहा है।
हाँ, दरबार का सूरज। मेंटेल का हेनरी बड़ा आकर्षक है। जवानी में वो हैंडसम था, एथलेटिक था, बुद्धिमान भी था और मजहबी भी, लेकिन वो बहुत असुरक्षित भी था। हक जताने वाला, जिद्दी और गुस्से वाला, और बस एक धुन थी उसके सर पे, बेटा, वारिस।
उपन्यास में हम देखते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे और ज्यादा निरंकुश, मतलब एब्सोल्यूट रूलर बनता जाता है। रोम से नाता तोड़ना, खुद को चर्च का हेड घोषित करना, ये सब उसी दिशा में कदम थे।
वो क्रॉमवेल की काबिलियत को पहचानता था, उस पर बहुत निर्भर भी था, लेकिन क्रॉमवेल के सिर पर हमेशा ये तलवार लटकी रहती थी कि राजा का मूड कब बदल जाए और वो अर्श से फर्श पर आ जाए।
और इस कहानी का एक और बहुत जरूरी किरदार, बल्कि कह सकते हैं कि क्रॉमवेल का मुख्य विरोधी, सर थॉमस मोर।
हाँ, सर थॉमस मोर, जिन्हें इतिहास में अक्सर एक संत, एक शहीद के तौर पर देखा जाता है, अ मैन फॉर ऑल सीजंस।
लेकिन मेंटल का नजरिया यहाँ भी काफी अलग है ना?
बिल्कुल, उपन्यास में मोर पुरानी दुनिया के प्रतीक है, कट्टर कैथोलिक सोच के। मेंटल मानती हैं कि वो बेशक बहुत बड़े विद्वान थे, वकील थे, लेकिन साथ ही वो धार्मिक मामलों में बेहद कट्टर थे।
कट्टर मतलब?
मतलब जो लोग चर्च के मान्यताओं से अलग सोचते थे, जिन्हें वो हेरेटिक्स कहते थे, उनके प्रति वो बहुत निर्मम थे।
ओहो।
उन्हें जिंदा जलमाने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं थी।
ओह, तो वो संत वाली छवि।
हाँ, मेंटल उस छवि को तोड़ती हैं। मोर का अटूट विश्वास था कि पोप ही चर्च का सर्वोच्च मुखिया है और चर्च को बांटा नहीं जा सकता, इसलिए वो हेनरी के चर्च का मुखिया बनने की बात या रोम से अलग होने की बात कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते थे। ये उनके लिए ईमान का सवाल था।
और यही उनका टकराव शुरू होता है राजा से और क्रॉमवेल से।
हाँ, उनकी कहानी एक दुखद अंत की तरफ बढ़ती है। वो लॉर्ड चांसलर के पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन असली टकराव तब होता है जब राजा की सर्वोच्चता की शपथ लेना सबके लिए जरूरी कर दिया जाता है। मोर ये शपथ लेने से साफ इनकार कर देते हैं।
तो ये क्रॉमवेल और मोर का टकराव सिर्फ सियासी नहीं था?
नहीं, ये विचारों का टकराव था, दो अलग अलग विश्व दृष्टिकोण का टकराव, व्यावहारिकता बनाम कट्टर आदर्शवाद।
तो क्रॉमवेल ने ये जो रोम से अलगाव किया, ये कानूनी तौर पर कैसे मुमकिन हुआ? ये तो बहुत बड़ी बात थी।
हाँ, ये एक तरह की विधायी क्रांति थी जो क्रॉमवेल ने संसद के जरिए की। उसने कानूनों की झड़ी लगा दी।
जैसे?
जैसे वो एक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अपील्स, इसने इंग्लैंड के कानूनी मामलों को रोम में अपील करने से रोक दिया। फिर थॉमस क्रैनमर को कैंटरबरी का आर्चबिशप बनाया गया, वो सुधारवादी विचारों के थे।
अच्छा, और क्रैनमर ने
आते ही हेनरी की कैथरीन से शादी को रद्द घोषित कर दिया, और एन बुलिन के साथ जो गुप्त शादी हुई थी उसे वैध करार दे दिया। फिर एन की रानी के तौर पर ताजपोशी हुई।
और इस सब का क्लाइमैक्स क्या था?
वो था 1534 का एक्ट ऑफ सुप्रेमेसी, यानी सर्वोच्चता का अधिनियम। इसने कानूनी तौर पर हेनरी को इंग्लैंड के चर्च का सुप्रीम हेड बना दिया। चर्च ऑफ इंग्लैंड अब रोम से आजाद था।
और फिर आई वो शपथ वाली बात।
हाँ, एक शपथ तैयार की गई। हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को ये शपथ लेनी थी कि वो राजा को चर्च का मुखिया मानते हैं और एन से होने वाले बच्चों को ही असली वारिस मानेंगे, और अगर कोई ये शपथ न ले
तो देशद्रोह।
बिल्कुल, और यही थॉमस मोर के साथ सीधा टकराव हुआ। मोर का शपथ लेने से इनकार करना सिर्फ उनका निजी फैसला नहीं था, ये राजा की नई सत्ता को एक खुली सार्वजनिक चुनौती थी।
और जाहिर है मोर को रास्ते से हटाने का काम किसे सौंपा गया होगा?
क्रॉमवेल को। मेंटल दिखाती हैं कि ये क्रॉमवेल के लिए भी आसान नहीं था। वो मोर की बुद्धि का, उनके सिद्धांतों का सम्मान करता था। उसने कोशिश भी की कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, मोर मान जाए।
लेकिन मोर नहीं माने।
नहीं, वो अपने उसूलों पर अड़े रहे। तो ये सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई नहीं थी, ये बहुत जटिल मनोवैज्ञानिक और वैचारिक द्वंद्व था, क्रॉमवेल की व्यावहारिकता और मोर का आदर्शवाद।
और अंत क्या हुआ?
अंत हुआ मोर के मुकदमे और उनकी मौत से। उन्हें टावर ऑफ लंदन में कैद किया गया, लंबी पूछताछ हुई, क्रॉमवेल ने सबूत जुटाने की बहुत कोशिश की।
क्या सबूत मिला?
आखिरकार रिचर्ड रिच नाम के एक आदमी ने झूठी गवाही दी। कहा कि मोर ने उसकी मौजूदगी में राजा की सर्वोच्चता को नकारा है। रिचर्ड रिच वो क्रॉमवेल का ही आदमी था जिसे क्रॉमवेल ने आगे बढ़ाया था।
ओहो, तो झूठी गवाही पर सजा हुई?
हाँ, मोर को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई। टावर हिल पर उनका सर कलम कर दिया गया। उन्होंने मौत को ऐसे स्वीकार किया जैसे वो एक शहीद की मौत मर रहे हों।
तो उपन्यास कहाँ खत्म होता है?
उपन्यास खत्म होता है 1535 की गर्मियों में। मोर मारे जा चुके हैं, बिशप फिशर जो एक और बड़े विरोधी थे वो भी मारे जा चुके हैं। एन बोलेन ने बेटे की जगह बेटी को जन्म दिया है, एलिजाबेथ। राजा हेनरी निराश है और एन की स्थिति अब थोड़ी डामाडोल है।
और क्रॉमवेल?
थॉमस क्रॉमवेल, वो अब राजा के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, मास्टर सेक्रेटरी, इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, पुटनी के लोहार का बेटा। उसकी क्रांति एक तरह से सफल हो चुकी है।
लेकिन जीत के साथ एक उदासी भी है शायद।
हाँ बिल्कुल, माहौल में एक तनाव है, एक अनिश्चितता। जीत तो मिली है लेकिन उसकी भारी कीमत चुकाई गई है।
और वो आखिरी सीन वुल्फ हॉल वाला?
हाँ, उपन्यास का आखिरी सीन वुल्फ हॉल में सेट है। ये सेमोर परिवार का घर है। वहां क्रॉमवेल और राजा हेनरी की नजर पड़ती है जेन सेमोर पर। वो एन बोलिन की एक शान सी दासी है।
और यही उपन्यास का शीर्षक वुल्फ हॉल मायने रखता है।
बिल्कुल, ये आने वाले बदलाव का, अगले तूफान का संकेत है। जेन सेमोर का उदय होगा और एन बोलिन का पतन। कहानी यहाँ रुक जाती है पाठक को भविष्य की आहट देकर।
ये उपन्यास वाकई कई स्तरों पर बात करता है। सबसे ऊपर तो ताकत और महत्वाकांक्षा का खेल है ही। कैसे लोग सत्ता पाते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्या कीमत चुकाते हैं।
हाँ, और ये एक सेल्फ मेड मैन की भी कहानी है। क्रॉमवेल दिखाता है कि जन्म नहीं काबिलियत मायने रखती है। वो सामाजिक बाधाओं को तोड़कर ऊपर उठता है।
और याददाश्त का अतीत का थीम भी बहुत मजबूत है। क्रॉमवेल के दिमाग में उसका अतीत हमेशा जिंदा रहता है। पुटनी की वो पिटाई, वुलजी का चेहरा, ये सब उसके आज के फैसलों को प्रभावित करते हैं।
बिल्कुल, और फिर धर्म, राजनीति और सिद्धांत, इनका जो टकराव है, मोर की कट्टरता और क्रॉमवेल की व्यावहारिकता, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लक्ष्य साधने के लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। ये सवाल तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना?
हाँ बिल्कुल, मेंटल के लिखने की जो शैली है वो भी इसे बहुत खास बनाती है। वो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में लिखती हैं।
हाँ, उससे एक इमेज ऐसी आती है, लगता है सब अभी हो रहा है। और वो जो वह ही सर्वनाम का इस्तेमाल करती हैं लगभग हमेशा क्रॉमवेल के लिए, पाठक को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है।
सही कहा, आप जैसे क्रॉमवेल के दिमाग के अंदर ही बैठ जाते हैं, दुनिया को उसकी आंखों से देखते हैं। और भाषा इतनी सजीव, आप उस दौर की गंध, आवाजें, वो माहौल महसूस करने लगते हैं।
हाँ, वो बिंब विधान, वो प्रतीक, जैसे भूत या वो बाज, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
तो कुल मिलाकर वुल्फ हॉल सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं है, ये सत्ता, स्मृति, नैतिकता और इंसान होने का क्या मतलब है, इन सब पर एक गहरी सोच है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षाओं, वफादारियों और नैतिक दुविधाओं का ताना बाना है।
और मेंटल हमें दिखाती है कि सत्ता का खेल कितना जटिल और व्यक्तिगत हो सकता है और कैसे अतीत हमेशा वर्तमान को आकार देता रहता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें।
समापन कथन ध्वनि, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।